तस्मै श्री गुरुवे नमः।
परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य
गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेष्ठं परिवर्धकं धर्म सम्बन्धकं
भवजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीतत्त्वार्थ सूत्र परनाम
शास्त्रनाम ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवः श्रीकृष्णदेवः तेषां वचनोन्मानमाश्राद्य मदास्वामीन्याचार्यदेवैः विरचितम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं भवतु मोगले मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्ममङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शाश्वतम् चिन्तितं द्वादशैव कोटो लक्ष्मणं सिद्धिस्तैं चैव पञ्चाशदस्तौ सहस्र सङ्ख्यामितशतं पञ्चपदं नमामि हरिहन्ति भाष्यर्थं गणदेवीं गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तिचित्तो सुधनाणमहो वयं शिरसा इच्छायि मन्त्रसुभति गौ सपुपोदस्तालोचु
से जो बात समझने की है वो ये है, आज के वर्तमान समय में बहुत मुश्किल है कि लोग देवों की उपस्थिति को स्वीकार करें, लेकिन भले ही विज्ञान इसे माने ना माने, अभी लेटेस्ट पैरासाइकोलॉजी परामनोविज्ञान विकसित हुआ है। परामनोविज्ञान का कहना है कि घोस्ट यानी भूत जाति के लोग भी हुआ करते हैं, वे अदृश्य होते हैं, उनका शरीर हमें जब तक वे ना दिखाना चाहें तब तक हम नहीं देख सकते। हालांकि उनका शरीर बहुत सुंदर होता है। उड़न तस्तरी की चर्चा आती है, कभी आप इसके बारे में पढ़िएगा, UFO अनडिफाइंड आकाशीय तस्तरियां जो हैं UFOs, उनके बारे में भी, उनके जो लोग उसमें से गिरे एक बार और वो जो निकले, उनकी साइज, उनका ऑर्नामेंटेशन, वो सारी चीज़ें ऐसी मालूम पड़ती हैं कि ये देव ही हैं। संभव है कि वे विजयार्थ की श्रेणी में रहने वाले विद्याधर हों और बरमूडा ट्रायंगल के आसपास उन्होंने अपना पूरा एरिया डिफेंस करके रखा है। कोई अगर खोज करने जाए तो वहाँ उसका विमान वापस नहीं आता, अचानक कहीं चला जाए तो विमान वापस आ जाएगा। आप खोज करने गए तो ना जहाज और ना विमान कोई भी नहीं आ पाता है, वहीं से उड़न तस्तरियाँ आती हैं। मेरा आशय ये है कि ये सब चीज़ें धीरे धीरे को आकर के प्रकट होंगी, पर हमारे आचार्य भगवंतों ने जो कहा है वो हमें उस पर श्रद्धा करना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं और जब हमारे सामने आती हैं तो हम चमत्कृत होकर के रह जाते हैं। ये तो ऐसा पंचम काल है जिसमें अच्छे प्रकार के देव तो आएंगे नहीं, वैमानिक देव तो आएंगे नहीं। विद्याधर भी जो है मनुष्य हैं, लेकिन रिद्धि प्राप्त आरी हैं, वो लोग भी हमारे बीच नहीं आते। हम इतने पुण्यवान नहीं हैं, आते भी हैं तो व्यंतर और भवनवासी जाति के देव ही आते हैं और वे ही जो है यहाँ पर अपन देखेंगे। लिखा हुआ है कि वास्तव में तो देवादि देव अर्थात इन देवों के द्वारा जो पूज्य हैं ऐसे वीतरागी भगवान ही सच्चे देव हैं, लेकिन वर्तमान समय में इन वीतरागी सच्चे देवादि देव रूप देव को लोग उतना महत्व नहीं देंगे जितना कि भवनवासी और व्यंतर देवों की भी पूजा करेंगे, क्योंकि उनके भीतर श्राप और अनुग्रह की शक्ति होती है। पर हम उस समय भूल जाते हैं कि अपने पाप के उदय में तो भैया सगो भैया भी पराव हो जात, और पुण्य का उदय हो गए तो शत्रु भी हमारा सहायी हो जाता, लेकिन जब विपत्ति आती है तो इन्हीं व्यंतर देवी देवताओं को लोग और पूजने लगते हैं, वीतरागी भगवान को भूल जाते हैं। हमें इस अध्याय से ये बात सीखनी चाहिए कि जितने भी ये व्यंतर और भवनवासी भूत पिशाच गंधर्व इत्यादि हैं, वे भी अपना संसार भोग रहे हैं, हम जैसे अपना संसार भोग रहे, ऐसे ही उनके भी संसार का सब सुख दुख लगा, उनके भी गृहस्थी लगी हुई है, और अपने तो फिर भी सुविधा है कि एक ही विवाह होता, उनके तो बिन्ने चाहें तो भी 32 जो है उनके देवांगनाएं होंगी, उनके साथ वे अपने ये बात अलग है कि आनंद पूर्वक वे रहते हैं, उनके धीरे धीरे कषायें भी ऊपर ऊपर मंद होती जाती हैं। हमने देवों के बारे में या तो बहुत अधिक अपने अंदर इस तरह बना रखा है कि बहुत बड़ी चीज़ है देव होना, और या फिर कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि देव से ज़्यादा निकृष्ट तो कोई नहीं है, वो तो पुण्य के फल में मिलने वाली विष्टा के समान है, ऐसा भी कहना शुरू कर दिया। देखो, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा जानो, न अति रंजित करो और न उसके लिए निंदित करो। देव हैं, वो भी एक जाति है, वो भी एक गति है, वे अपने हिसाब से, और देखो ग्रैवियक से ऊपर के तो सब देव सम्यक दृष्टि ही होते हैं नियम से, और ग्रैवियक में भी जाने वाले मुनि महाराज के अलावा कोई नहीं होते हैं, और ग्रैवियक में भी जेने समझो कि सबरे मिथ्यादृष्टि की संख्या अल्प है, वहाँ भी ग्रैवियक में सम्यक दृष्टि की संख्या बहुत है। यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सुलह उपजावें, तैते चय नर जन्म पाए मुनि भय शिव जाओ। सो ऐसा भी स्वर्ग है जहाँ से हम थोड़ी देर वहाँ विश्राम करके अपने व्रत नियम संयम पालन करने के लिए पुनः आ सकते हैं। इसलिए जैसा देवों का वर्णन है वैसा विश्वास करना चाहिए। भूत पिशाच इत्यादि भी होते हैं, आप मानो तो और न मानो तो, लेकिन उनकी उपस्थिति है तो वो हमें दिखाई भले ही नहीं पड़े। ऐसे ही ज्योतिष मंडल के बारे में भी है कि ज्योतिष मंडल हमारे से मेल नहीं खाता है, तो भैया कबो मिलावे की कोशिश करी होए तो मेल खाए हैं। सूर्य और चंद्र, आज आप आश्चर्य करेंगे, मैं कुछ बातें हैं आपको थोड़ी सी बताऊं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिकॉर्डिंग आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे। आज की साइंस ये मानती है कि बहुत बड़ी आकाश गंगा है जिसमें कि असंख्यात सूर्य और चंद्रमा हैं, जिनको कि विज्ञान नहीं खोज पाया है। दो सूर्य और दो चंद्रमा जो जम्बूद्वीप के लिए कहे गए हैं, विज्ञान ने धीरे से मान लिया है, ये कह करके कि जो सूर्य कल आया था वो अब कल नहीं आएगा, वो परसों आएगा, दूसरा सूर्य आता है। दो ही चंद्रमा हैं जो इसके लिए आप आश्चर्य करेंगे। सुमेरु पर्वत के बीचों बीच तो ये विदेह क्षेत्र है, उसके इस बॉर्डर पर नील पर्वत है, इधर निषद पर्वत है। जब सुमेरु पर्वत के नील की तरफ से और इधर निषद के इस तरफ दो सूर्य, एक उधर स्थित है एक इधर स्थित है, यहाँ से चलता है तो पूरा विदेह क्षेत्र एनलाइटेड होता है। उस समय ऐरावत और भरत क्षेत्र में कोई लाइट नहीं होती है 12-12 घंटे तक, जैसा भी सिस्टम है। फिर जैसे ही ये वाला सूर्य निषद पर्वत पर आता है और वो नील पर्वत पर पहुंचता है तो उधर पूरा ऐरावत एनलाइटेड होता है। इधर निषद की आभा चूंकि लाल रंग की है इसलिए पूरा एनलाइटेड भरत क्षेत्र हो जाता है। हमें समझना चाहिए हमारे यहाँ पर भी ये सारी व्यवस्था दिन और रात की, सूर्य चंद्रमा की व्यवस्थित है ज्योतिष मंडल की। धीरे धीरे वो सब चीज़ें विज्ञान समझेगा खोजेगा। और आश्चर्य तो यही होता है कि अनंत कह रहे हैं वो कि जो चंद्रमा है ऐसे ऐसे अनंत हैं, हमारे यहाँ भी तो यही कहा हुआ है, पूरे ढाई द्वीप के लिए 132 सूर्य हैं, 132 चंद्रमा हैं, 11,616 नक्षत्र हैं और 11,616 ग्रह हैं और 3696 नक्षत्र हैं। ये इतनी संख्या ढाई द्वीप के लिए है, और ढाई द्वीप के बाहर, ये तो ढाई द्वीप में जो सूर्य चंद्र हैं वो घूमते हैं, लेकिन ढाई द्वीप के बाहर के सूर्य चंद्र स्थिर हैं, जो आज अपन कहते ना साइंस में कि भैया सूर्य नहीं घूमता है पृथ्वी घूमती है, तो हम भी कहते हैं कि हाँ सूर्य नहीं घूमता, कहाँ नहीं घूमता, ढाई द्वीप के बाहर नहीं घूमता, ढाई द्वीप के भीतर तो घूमता है। ढाई द्वीप के भीतर के सूर्य चंद्रमा तो मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं बहिरावस्थिता, उसके बाहर के नहीं करते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, जब तक ईसाईयत नहीं आई थी उसके पहले टॉलमी नाम के साइंटिस्ट हुए हैं ईशा से पहले, उस समय तक पृथ्वी स्थिर और सूर्य को घूमता हुआ माना जाता था। चूंकि बाइबल के खिलाफ ये बात थी, इसलिए गैलीलियो से मजबूर करके और उसे ये कहलवाया गया था कि ये कहो कि पृथ्वी घूमती है, सूरज स्थिर है। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ गणित के कैलकुलेशंस के लिए ये पूरा सिद्धांत पश्चिम के लोगों ने प्रतिपादित करके आज की किताबों में फैला के रखा है। ओरिजिनली तो जो जैन दर्शन में लिखा या बौद्ध दर्शन में या कि वैदिक दर्शन में, तीनों में यही बात लिखी हुई है कि नहीं, सूर्य घूमता है, पृथ्वी तो स्थिर है। लेकिन अब चूंकि गुलामी रही 200 साल तक उत्तरण पैरवे को, हाँ यही कह हम तो हिंदी में कि उत्तरण पैरवे की आदत रही, जो कछु उनने कह दई सो चुपचाप बाबा वाक्य प्रमाणम, सुबह तो मान लो अपनो ओरिजिनल जो है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं, और तर्क वितर्क करने के लिए बहुत तैयार हैं आज के जो थोड़े से पढ़ लिख जाते हैं, उनको तर्क वितर्क तो बहुत आता है लेकिन श्रद्धा से ये बात नहीं हो पाती हमारे भीतर। कह रहे नहीं, हमारे आचार्य हमें बुद्धू थोड़ी बनाएंगे, जिन्होंने हमें प्रयोजन भूत तत्व को तो 100% सही बताया, वे इस अप्रयोजन भूत बातों को झूठा बताएंगे क्या? नहीं, जिन्होंने हमारे कल्याण का मार्ग सच्चा बताया है वो इन सब बातों को भी जैसा अपने दिव्य ज्ञान से जानते वैसा, इसलिए हमें इन सब चीज़ों को, मैं ये इसलिए बता देता हूँ कि आजकल बहुत जल्दी चमत्कृत हो रहे हैं विज्ञान के द्वारा, तो उत्ता विज्ञान तो हम लोग जो है अगर थोड़ा सा पढ़ें तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और हमारे सब जैन दर्शन से मिलती, हमें तो इस बात का बहुत गौरव है। हम तो लेटेस्ट से लेटेस्ट रोज़ जो है नई नई चीज़ें आती हैं और उनको टैली करते रहते हैं धर्म से, और मज़ा लेते रहते हैं कि हाँ ठीक आप करते रहो, हमें गौरव है कि आप अंततः हमारी बात का सपोर्ट करते हैं, आप आज खोजते हैं और हमारा सपोर्ट होता चला जाता। आज तक कोई भी चीज़ जैन दर्शन में जो कुछ भी लिखा है उसके विपरीत जाकर के नहीं हुई। 5वां अध्याय पढ़ करके तो आप और अधिक चमत्कृत होंगे, होना भी चाहिए, चमत्कृत मतलब गौरवान्वित होना चाहिए कि हाँ हमारे पास सारी जानकारी है। पर क्या करें, हमने अजीव तत्व और इन सब के बारे में जानने नहीं चाहा, हमने अपने आत्मा के अलावा बाकी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए ही नहीं, हमने कहा ये तो सब जान लो, इसको जान लोगे और अपने आत्मा को नहीं जान पाए तो भी कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जब बाबा जी बड़ी बारीक चर्चा होती थी वरुण जी के पास में, और जब समझ में नहीं आती तो क्या कहते, ए भैया जान विखो तीन लोक डरो, सो जब चाहे जब जानत रहियो, मनोवे कर विखो तीन ही बातें हैं, राग द्वेष मोह न कर। जान विखो तीन लोक डरो, सो जब चाहे जानत रहियो, मनोवे करने क्या है कि ते राग द्वेष मोह न करो, और जो व्यक्ति राग द्वेष मोह न करेगा उसको तो तीन लोक केवल ज्ञान में हस्ता मलक वत ऐसे झलक जाएंगे, यही सच्चा उपाय है। इन चीजों को अपन इसी दृष्टि से पढ़े। अब देखिएगा, स्थिति प्रभाव सुख दुतिलेशा विशुद्ध इंद्रियावधि विषय तो अधिका। ये जो वैमानिक देव हैं जिनका वर्णन चल रहा है, जहाँ तक इंद्र सामान्य इत्यादि का विभाजन है वो कल्प कहलाते स्वर्ग, उसके ऊपर कल्पातीत हैं। इन सब में किस तरह की व्यवस्था होती है, तो इनकी स्थिति जो है ऊपर ऊपर के देवों की बढ़ती जाती है, ड्यूरेशन जो लाइफ इनका स्पान है वो ज़्यादा ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, इनका प्रभाव बढ़ता जाता है। शाप और अनुग्रह करने की शक्ति का नाम प्रभाव है, ये बढ़ता चला जाता। इनका सुख, इंद्रियों के सुख इनको जो है कंफर्ट, बहुत अच्छे सुख की सामग्री इनको मिलती चली जाती, सुख बढ़ता जाता। ऑर्नामेंटेशन, जितनी भी इनकी द्युति है, इनकी आभा है, वो बहुत बढ़ती जाती। अच्छा, देवों में एक चीज़ ज़रूर है कि ये लोग आपस में एक दूसरे की आभा देख के समझ जाते हैं कि इसकी आभा मेरे से ज़्यादा है, इसका मतलब है इसने मेरे से ज़्यादा पुण्य किया है, धर्म किया है, और फिर वो अवधि ज्ञान से जान लेता है कि अरे मैंने जो है पापों से विमुक्त नहीं हुआ था, ये व्यक्ति पापों से विमुक्त होकर यहाँ आया है इसलिए इसको इतनी आभा मिली। तो सम्यक दृष्टि होता है तो ईर्ष्या नहीं करता, मिथ्या दृष्टि होता तो ईर्ष्या करके और झूठता है। अपने बुंदेलखंड में कहते देख देख के कुड रहे, ऐसे ही वहाँ पर भी है उनको शरीर की, हाँ शरीर की कछु तकलीफ नहीं है, उनको मानसिक पीड़ा बहुत होती है मिथ्या दृष्टि देवों के लिए, वहाँ पर भी इस दुति को देख करके, आभा को देख करके, अरे इनका शरीर हमसे ज़्यादा एनलाइटेड है। अच्छा, और ये देव जो है उपास सैया पर बिल्कुल विथ ऑर्नामेंटेशन पूरी सजावट मुकुट और वस्त्र सहित उत्पन्न होते हैं, ऐसा नहीं समझना जैसे अपन उत्पन्न होते फिर बाद में कपड़े इत्यादि पहनते, नहीं उनका तो ज्यों कहते हैं पूरा शरीर, और कुमार अवस्था में जैसे 16 वर्ष का कोई नव युवक है वैसे जो है खड़े, और पूरे जीवन ऐसे ही रहते हैं इसलिए इनको कुमार कहते हैं। इनकी वृद्धावस्था नहीं आती, जीर्ण शीर्ण झुरनी वाला शरीर नहीं होता है, ये विशेषता है। लेशा विशुद्धि, इनकी लेशाएं भी पवित्र होती चली जाती हैं। पीत से पद्म, पद्म से शुक्ल लेशा, परम शुक्ल लेशा ऊपर ऊपर बढ़ती जाती। इंद्रिय के विषय भी इनको अच्छे अच्छे मिलते हैं और इंद्रिय के विषयों की सामर्थ्य भी इनकी बढ़ती चली जाती है। अवधि ज्ञान का की सामर्थ्य भी इनकी और अधिक बढ़ती चली जाती है। ये सब चीज़ें तो बढ़ती हैं, लेकिन अब मज़ा देखना कौन सी चीज़ घटती है। गति शरीर परिग्रह अभिमान तो ही ना, इस सूत्र से मालूम पड़ता है देवों की वास्तविकता कि जितने बड़े देव होंगे उतने ज्यादा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की चेष्टा कम करेंगे। जितना बड़ा आदमी होता, बड़ा मतलब जित तो वजनदार आदमी होते है, ज्यादा उपद्रवी नहीं होते, क्या होते भगवर होते, चंचलता नहीं होती। कहते यही स्थिति इनमें है, इनके वजनदार आदमी जितने ज्यादा बड़े ऊंचे देव हैं ज्यादा आगमन नहीं करते, वे अपने आप में संतुष्ट हैं, जहां हैं वहीं पर आनंद से रहते हैं। और हालांकि देखना इनमें गमन करने की सामर्थ्य ज्यादा है, ये अधिक दूर तक गमन कर सकते, लेकिन कम से कम गमन करते हैं। शरीर की इनकी हाइट जो है वो घटती चली जाती है। सबसे बड़े देव की हाइट कितनी होती पहले स्वर्ग में, 10.5 फीट की, 7 हाथ की, 7 हाथ मतलब लगभग 10.5 फीट, और सरवार सिद्धि तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 1 फीट, मतलब सिर्फ 1 हाथ 1.5 फीट के लगभग हाइट रह जाती है। हाइट कम होती चली जाती, लेकिन सुंदरता बढ़ती चली जाती। परिग्रह भी कम होता चला जाता। परिग्रह का अर्थ यहाँ पर मूर्छा है ना, वैसे तो इनकी संपत्ति और वैभव बहुत बढ़ जाता है, सो बाहर का वैभव नहीं कहलाता परिग्रह, भीतर की मूर्छा परिग्रह कहलाती। तो कहते हैं इनका बाह्य वैभव तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन भीतर इनके आसक्ति घट जाती है। ये विशेषता है देवों की। और अभिमान भी कम होता, जितना बड़ा देव होगा उसमें उतना कम अभिमान होगा। देखो अगर हम यहाँ बैठे बैठे भी देव बनना चाहें तो हमारे भीतर देवतापना कैसे आएगा? देवतापना आएगा हमारी स्थिरता से, देवतापना आएगा हमारी आसक्ति के कम होने पर, और देवतापना आएगा हमारे अभिमान के कम होने पर। यही तो देवों की विशेषता है। सो ऐसा देवतापना तो आज भी अपन चाहें तो अपने जीवन में यहीं पर भी प्राप्त कर सकते। वास्तव में तो वो तो स्वर्ग नरक हैं ही, हम अपने जीवन को यहाँ पर भी स्वर्ग और नरक जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। देवों का आहार तो बता ही दिया था, अमृत का आहार होता है। और मज़ा ये है कि अगर एक सागर की आयु वाला देव है तो उसको सांस 15 दिन में एक बार लेना पड़ती, ऑक्सीजन की उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वे अपने आप में बहुत अधिक सक्षम हैं। उनका रेस्पिरेशन जो है वो बहुत इतना सशक्त है कि थोड़ी सी ऑक्सीजन से भी उनका जीवन चलता रहता है। एक सागर की आयु वाले देव 15 दिन में एक पक्ष में, एक सागर के पीछे एक पक्ष, तो जितने जितने उतने देर बाद वो सांस लेते हैं और अपना जीवन जीते हैं। इनकी लेशाएं कैसे होती हैं? तो लेशा मतलब होता है कलरेशन, हमारी भाव दशा, भीतर का जो हमारा भाव है वो लेशा कहलाएगा। यहाँ पर देवों के साथ एक चीज़ और है कि उनका बाहर और भीतर एक जैसा होता है, बाहर का जैसा रंग होगा वैसे ही भीतर उनके लेशा भी होगी। पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्री शेषेशु, दो युगल जो हैं उनमें पीत लेशा होती है। दो युगल मतलब पहला दूसरा और तीसरा चौथा स्वर्ग, इनमें बाकी के फिर चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां यहाँ तक आना चाहिए, 3 युगल। इन युगल में जो है पद्म लेशा होती, उसके बाद शुक्ल लेशा होती है। 4 स्वर्गों तक पीतलेशा है, आगे के 3 युगल मतलब 5वें से 10वें स्वर्ग तक पद्मलेशा है, और फिर उसके बाद अंतिम सर्वार सिद्धि तक के देवों तक शुक्ललेशा ही होती है। प्राग्रैव्य के व्या कल्पा, ग्रैव्य से पहले पहले के जो 16 स्वर्ग हैं उन्हें कल्प कहते हैं, क्योंकि वहां पर इंद्र सामानिक इत्यादि की कल्पना की गई है। बाकी तो फिर सब अहमिंद्र हैं, वहां पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन 16 स्वर्ग तक तो छोटे बड़े कहलाते हैं। ब्रह्मलोकालया लौकांतिका, ये बहुत स्पेशल चीज़ है, ब्रह्मलोक में लौकांतिक देवों का निवास स्थान है। ब्रह्मलोक कौन सा है? 5वां स्वर्ग है ब्रह्म, हैं उस ब्रह्म 5वें स्वर्ग के अंतिम भाग में। लोक ब्रह्म को भी लोक कहते हैं, 5वें स्वर्ग को लोक कहते हैं। उस लोक के अंत में जो स्थित हैं वे लौकांतिक कहलाते हैं, या कि लोक का अर्थ है संसार, जिनके संसार का अंत निकट है वे लौकांतिक कहलाते हैं। ये लौकांतिक देव एक भवावतारी होते हैं, वहां से सीधे आते हैं मनुष्य होकर के, मुनि बन के, और मोक्ष चले जाते हैं। ये इनके देवों के ऋषि कहलाते हैं, देवर्षि इनको कहते हैं, देवों के द्वारा भी ये पूज्य हैं और हमेशा नहीं आते, ये तो जब भगवान दीक्षा लेते हैं तो उनके वैराग्य की प्रशंसा करने के लिए आते हैं कि वाह, बारह भावनाओं का चिंतन करते हैं पूरे जीवन भर। और इतने ही नहीं, जिन जो मुनि महाराज अपने जीवन भर बारह भावनाओं का चिंतन करें और निर्दोष अपने व्रतों का पालन करें, वे ही लोकांतिक देव बन सकते हैं, और किसी के लिए लोकांतिक देव बनने का की गुंजाइश नहीं है। इनके नाम दिए हैं सारस्वतादित्य वन ऋण गर्द तो तुषिता व्यावाधार स्टाच, लालस तो नहीं आ रही बनवे की, आ रही हो तो भैया अच्छी बात है, अगर इस प्रकार बनने की मन में आ जावे तो फिर उपाय भी करना पड़ेगा उसका। जब जिसको पढ़ इसको पढ़ने से लालस तो आती, आपको भले ही आए चाहे अपन को तो आती कि ये जो है ये वाला मिल जाए, तो नहीं मिल जाए अपना लौकांतिक भी हो गए तो बस आएंगे और सीधा मोक्ष चले जाओ, बहुत आसान है, एक भाव अवतारी होते हैं ये। और इनके नाम सारस्वत हैं, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अभ्यावाद और अरिष्ट, ये लोकांतिक देव हैं। विजयादिशु द्विचर्माः, जो विजयादि हैं, विजय, वैजयंत, जयंत, पराजित और सर्वार सिद्धि, ये पांच अनुत्तर विमान कहलाते हैं। ये विजयादिक में जो देव हैं वे द्विचरम शरीरी होते हैं, अर्थात दो बार मनुष्य जन्म लेंगे और वे मोक्ष चले जाएंगे, इतना ही उनका भाव शेष रह जाता है। औपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यज्ञो नयः, जो उपाध्यन वाले हैं और मनुष्य हैं, इनको छोड़ दीजिएगा तो जितने संसार के जीव हैं वे सब तिर्यंच में आ गए। उपाद जन्म वाले कौन हैं? देव नार की, और मनुष्य, मनुष्य को छोड़ दो, वो उपाद जन्म वाले नहीं हैं, पर उपाद जन्म वाले देव नार की और तीसरे मनुष्य, इनको छोड़ दो तो बाकी जितना संसार है वो सब तिर्यंच हैं। एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री तक भी त्रियंच होते हैं, त्रियंचों का संसार बहुत बड़ा है, देव और नारकी और मनुष्य, और उनके अलावा तो सब त्रियंच ही हैं। तो इस सूत्र अलग से कहना पड़ा इसके त्रियंच गति बताने के लिए कि उपाजन वाले और मनुष्य, इनके सिवाय जितने संसारी जीव हैं वे सब त्रियंच गति वाले ही हैं, एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री तक त्रियंच होते हैं। स्थिति रसुर नाग सुपर्ण दीप शेषा नाम सागरूपम त्रिपल्लोपम आर्दही निमिता। अब हम जो है आचार्य भगवंत कहते कि इनकी आयु बताते हैं, अधिकतम आयु और जघन आयु दोनों हमें समझ लेना चाहिए। किसी व्यक्ति को सुख मिले तो कितनों ज्यादा से ज्यादा सुख भोग सकत और कम से कम कितना सुख भोगने का समय है, अपन तो यही जानते हैं, इसमें स्वर्ग में सुख भोगना है तो कितने समय तक, जैसे नरक में दुख भोगना तो भैया 33 सागर तक, ऐसे ही स्वर्ग में सुख भोगते तो 33 सागर तक स्वर्ग भी सुख भी भोगते हैं। अब असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, दीप कुमार, ये सूत्र मैंने पढ़ लिया कि नहीं? स्थिति रसुर नाग सुपर्ण दीप शेषानाम सागरूपम त्रिपल्ल्योपम आर्दही निमिता। असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, दीप कुमार और जो शेष भवनवासी देव हैं उनकी आयु क्रम से 1 सागर, 3 सागर, 2.5 सागर कम होती जाती, आदि आदि 2 सागर और फिर 3 पल्ल की रह जाती है, ये इनकी उत्कृष्ट आयु है। और सौधर्म ईशान यो सागरोप में अधिके, सौधर्म ईशान स्वर्ग के देवों की कितनी होती? तो कहते 2 सागर से कुछ ज़्यादा होती। सानत कुमार माहिंद्र यो सप्त, सानत कुमार और माहिंद्र, देखो ऐसा रहता, सौधर्म ईशान, सानत कुमार, माहिंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिस्ट, शुक्र, महाशुक्र, ऐसे 8 एतरपी और 8 एतरपी, ये 16 स्वर्ग हो गए। और फिर ये अपने जैसे ये हड्डी हैं, 8 एतरपी 8 एतरपी, ये 16, और जग्रीवा है, सो ये में 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे 3, सो ये ग्रीवयक हो गए। और बाकी के जो है ये मुँह हैं जैसे, तो एक बीच में और 8 आजू बाजू, से जो अनुदेश हो गए, और ओक ऊपर 5, एक बीच में और 4 चारी तरफी, सुजी हो गए अनुत्तर, कठिन कचुनिया सब यही में हैं, और जो ऊपर है सो सिद्ध सिला, समझने के लिए जो हमेशा ध्यान में रहेगा ऐसे ही रहता। अब जी सानत कुमार और महेंद्र इनकी आयु कितनी रहती? तो कहते इनकी कुछ अधिक 7 सागर रहती, 3 सप्त 9 एकादश, 3 10 5 10 विरधिकानी तू। और अब जो है इनमें बढ़ा करके, अब हम इस सूत्र का सीधा अर्थ इसमें बढ़ा करके बता देते आपको, सानत कुमार महेंद्र की कितनी हो गई, सात सागर की, अब जो है त्रि, अब तीन बढ़ा दो, फिर सात बढ़ा दो, फिर नौ बढ़ा दो, अब इनको जोड़ करके देखो तो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में कुछ अधिक दस सागर की हो गई, लांतव कापिस्त्र में कुछ अधिक चौदह सागर की हो गई, शुक्र महाशुक्र में कुछ अधिक सोलह सागर की हो गई, शतार सहस्त्रार स्वर्ग में अठारह सागर कुछ अधिक हो गई, आनत और प्राणत में बीस सागर कुछ अधिक हो गई, आरण और अच्युत पंद्रह में सोलह में स्वर्ग में हो गई कितनी, बाईस सागर, तो सोलह में स्वर्ग में बाईस सागर तक पहुंच गए। अब उसके बाद ग्रहवियक आ गए, तो ग्रहवियक जो तीन तीन के बने हुए हैं तो उसमें एक 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 बढ़ाते जाओ, बाईस से तो तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस, ये सब ग्रहवियक हो गए। ग्रहवियक की अंतिम ग्रहवियक की कितनी, इकतीस सागर की हो गई, और फिर उसके बाद नौ अनुदिश आ गए, सो उनकी आयु बत्तीस सागर, सबकी बत्तीस, और पांच अनुत्तर हैं, सो सबकी उत्कृष्ट आयु तैतीस सागर की है। बस अपरापल्युपम अधिकम, प्रथम युगल में जघन आयु कितनी है, तो कहते कुछ अधिक एक पल की है, और बाकी तो परता परता पूर्वा पूर्वानंतरा, बाकी जो पहली पहली जिसकी उत्कृष्ट है सो बाद की वो जघन हो गई। जैसे के सौधर्म ईशान की जघन आयु तो बता दी एक पल कुछ अधिक, और उनकी उत्कृष्ट कितने खती, कहते के कुछ दो सागर और कुछ अधिक, सुबह दो सागर और कुछ अधिक अब जघन हो गई सनत कुमार और महेंद्र की, तीसरे चौथे बार ऐसे जो है घटाते चले जाते हैं। इस प्रकार फिर कहते अब नारका नाम चा द्वितीयादिशु, अब जी अध्याय में देवों और सबका वर्णन जीवों का खत्म होने वाला है, सब नार की जीव की बता दी आयु, नारका नाम चा द्वितीयादिशु, नार की जीवों की भी जो पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट आयु बताई थी सो आगे आगे की वो जघन होती जाती, तो कहते फिर पहले की कैसे मन है, सो पहले की बता देते, दस वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, पहले नरक में अगर कोई की आयु होवे कम से कम तो दस हजार वर्ष की तो आयु रहेगी। सैनिक चक्रवर्ती सैनिक को कितनी मिली, चौरासी हजार वर्ष की, कैसे चौरासी वर्ष हजार में पंचम काल के इक्कीस और छठे काल के इक्कीस, फिर छठे के इक्कीस और पंचम के इक्कीस, सो चौरासी हजार वर्ष बीत जाएंगे नरक में, सो सीधे आकर के चौथा काल यहाँ जैसे ही होगा सो पहले तीर्थंकर हो जाएंगे। कम से कम कितनी हो सकती तो दस हजार वर्ष, और ज्यादा से ज्यादा पहले नरक की आयु कितनी, एक सागर की होती है। भवनेशु चा, कहती दस हजार वर्ष की तो भवनवासी देवों की भी जघन आयु है, और वेंत्राणाम चा व्यंत्रों के भी दस हजार वर्ष की जघन आयु है। परापल्युपम अधिकम, उत्कृष्ट कितनी है, तो कहते कुछ अधिक और पल्ल के पल्युपम प्रमाण है। ज्योतिषका नाम चा, ज्योति देवों की उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक पल्ल प्रमाण है। तदष्ट भागो परा है, और जघन स्थिति जो है उनकी ये तो उत्कृष्ट हो गई, और जघन स्थिति क्या है, उत्कृष्ट की एक बाटे आठ। तदष्ट भागो परा, अपरा मतलब जघन, तो उत्कृष्ट जितनी है उसकी एक बटे आठ कर दो सो वो जघन हो जाती है। इस प्रकार ज्योति देवों का भी हिसाब बना दिया, भवनवासी व्यंतर नारकी सब हो गए। अब कहते लोकांतिका नामस्तौ सागरोपमानी सर्वेशाम, जितने लोकांतिक देव हैं उनकी आयु तो आठ सागर की है, इनके उत्कृष्ट और जघन का भेद नहीं होता है। बस इस प्रकार से देवों के बारे में अपन ने आसानी से जान लिया। अब अगर बनवे की गुंजाइश हुई तो वैसा उपाय करेंगे, लेकिन बने तो अपन सम्यक दृष्टि बने। उसमें कहते कि सम्यक दर्शन के साथ अगर देव पर्याय प्राप्त हुए तो आकर के अपना शीघ्र कल्याण करने का अवसर मिल जाता है। ऐसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के। गुरुवर शाश्वत सुख,
भोजनशाला में की गई है, सभी अतिथियों से निवेदन है भोजनशाला में ही भोजन ग्रहण करें। आज का आतिथ्य सत्कार फर्म राजकुमार शैलेंद्र कुमार, फर्म राजकुमार शैलेंद्र कुमार की ओर से किया गया है, तो आप सभी आगंतुक अतिथियों से विनम्र निवेदन है, विनम्र अनुरोध है, भोजनशाला में ही भोजन ग्रहण करें। आज दोपहर पूर्ववत कार्यक्रम चलेगा, तत्वार सूत्र का पाठ होगा और उसके बाद पूज्य मुनिश्री के प्रवचन होंगे। ठीक सवा दो बजे से तत्वार सूत्र जी के पाठ होगा और ठीक पौने तीन बजे से पूज्य मुनिश्री के प्रवचन होंगे। आप सभी से निवेदन है समय का ध्यान रखें। आज रात्रि में आरती प्रतियोगिता जूनियर वर्ग के लिए 12 से 18 वर्ष, आज रात्रि में आरती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जो भी बालक बालिकाएं उसमें भाग लेना चाहते हो अपने नाम लिखा दें।
आरती प्रतियोगिता में जो भी भाग लेना चाहें उनको सूचना है, ठीक 11 बजे तक ही नाम लिए जाएंगे। यह जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता है, उसके बाद नाम नहीं लिखे जाएंगे। धन्यवाद।